हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हर्षिता शिविका के सामने कुछ ज्यादा ही मित्रवत व्यवहार कर रही थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो नाटक कर रही है या झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी ऋषभ को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि हर्षिता जानबूझकर उसकी चापलूसी कर रही है और असल में वो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन शिविका को समझ आ रहा था कि वो सब कुछ पूरे मन से बोल रही है, क्योंकि शिविका लोगों की पहचान रखती थी। वो एक दिन में इतने सारे लोगों से मिलती और डील करती थी, इसलिए उसने मुस्कुराकर हर्षिता को मना कर दिया। लेकिन हर्षिता फिर भी नहीं मानी और उसके लिए ब्रेकफास्ट रूम में ही लेकर आ गई। ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो हर्षिता, तुम पर सूट नहीं कर रहा है। अच्छा भाई, आपको बहुत पता है क्या सूट करता है मुझ पर और क्या नहीं, हर्षिता ने कहा। उन दोनों के बीच हमेशा इसी तरह की बातें होती थीं, इसलिए शिविका ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, अरे नहीं हर्षिता, ऋषभ के कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें और भी तो काम होंगे ना, तुम रहने दो ये सब और मैं कर लूंगी ब्रेकफास्ट, थैंक यू। क्या दी, मैं भी तो आपकी छोटी बहन हूँ और आप मुझे थैंक यू बोलकर पराया फील करवा रहे हो, इट्स नॉट गुड, हर्षिता ने मुंह बनाते हुए कहा। शिविका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं, अपने पराई वाली बात कहाँ से आ गई, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि इतना मेरा काम करके मुझे बिगाड़ो मत, वैसे भी मुझे अभी ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना। शिविका की ये बात सुनकर ऋषभ कन्फ्यूजन से बोला, ऑफिस कैसे जाओगी दी, आज डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है, सुना नहीं क्या आपने। ऋषभ की बात पर शिविका ने एक गहरी सांस लेते हुए बेबसी से कहा, हाँ सुना तो, लेकिन क्या कर सकती हूँ, आखिर जाना तो पड़ेगा ही ना, कोई और तो है नहीं जो मेरी जगह पर आज के लिए सब्स्टिट्यूट बनकर चला जाएगा, क्योंकि ऑफिस देखना भी जरूरी है और अपना बाकी का काम तो मैं घर से भी निपटा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी चार्ज में नहीं है। शिविका ने जानबूझकर ये बात कही क्योंकि वो ऋषभ को ऑफिस भेजना चाहती थी। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे लेकिन जब घर से ही काम कर लोगे तो फिर ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, और ये एक दो दिन का रेस्ट तो आप ले ही सकते हो ना भी। हर्षिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, एक या दो दिन नहीं, कम से कम पूरे 15 दिन तक आपको चलना नहीं है दी, क्योंकि तभी आपका पैर पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। शिविका ने हाथ से इशारा करते हुए सिर हिलाकर कहा, क्या 15 दिन, नहीं नहीं, इतने दिन तो मुझसे नहीं बैठा जाएगा एक जगह पर, और बाकी सारा काम चौपट हो जाएगा इतने दिन में तो। ऋषभ थोड़ा सा सोचते हुए बोला, लेकिन आपकी चोट भी तो लगी है ना, कम से कम थोड़ा तो सोचो अपने बारे में, और रही बात ऑफिस की, तो कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस चला जाऊंगा आपकी जगह पर, सबको सुपरवाइज ही तो करना है ना। उसकी इस बात पर शिविका और हर्षिता दोनों को ही विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वे दोनों लड़कियां हैरानी से मुंह खोलकर ऋषभ की तरफ देखने लगीं, जैसे कि उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश कर रही हों। ऋषभ ने उन दोनों से नजरें चुराते हुए कहा, क्या है, अब इस तरह क्यों देख रही हो दोनों, कौन सा तुम दोनों की किडनी मांग ली है मैंने। शिविका ने उससे सवाल किया, कुछ नहीं, बस यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई ने ये बात बोली। ऋषभ तुम होश में तो हो ना, ज्यादा पी हुई तो नहीं है ना तुमने। ऋषभ ने बच्चों की तरह नाराज होते हुए कहा, देखो दी, मैं हर वक्त नशे में नहीं रहता हूँ और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज अगर आप बार बार ये बातें बोलोगी ना तो फिर मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद ही देख लेना अपना ऑफिस और काम सब। उसकी बात सुनकर शिविका ने जल्दी से कहा, अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, जाओ तुम रेडी होकर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। शिविका की इस बात पर सिर हिलाकर ऋषभ वहां से चला गया। इस बात को सुनकर शिविका बहुत खुश हुई। इसके बाद उसने हर्षिता से कहा कि वो नीचे जाकर उसके पापा को बता दे कि वो ठीक है, नहीं तो वे नीचे फिक्र कर रहे होंगे। शिविका की बात मानकर हर्षिता भी उसके पापा मिस्टर खन्ना को इस बारे में बताने के लिए चली गई। साथ में उसने सबके ऑफिस जाने वाली बात भी मिस्टर खन्ना से बता दी, जिस पर पहले तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि जरूर हर्षिता कोई मजाक कर रही है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ऋषभ को एकदम अच्छे से रेडी होकर कहीं के लिए निकलते हुए देखा तो उन्हें इस बात पर पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा भरोसा हो गया, और बाकी उन्होंने ऑफिस में कॉल करके कन्फर्म करने की सोची। शिविका ने अपने बाकी बचे हुए काम को देखने के लिए करण को कॉल करके घर पर ही बुला लिया। उसके पैर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसने सोचा अगर वो करण को बुला लेगी तो उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही देने पड़ेंगे, बाकी काम करण आसानी से कर लेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। इसके अलावा उसका करण से मिलने का भी मन हो रहा था, लेकिन इस बात को तो वो कंसिडर ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ ऑफिस में कल रात अपने मम्मी पापा की बात को लेकर सोचते हुए करण का भी मूड खराब था, इसलिए आज वो टाइम से पहले ही ऑफिस आ गया। लेकिन शिविका अब तक ऑफिस नहीं आई थी। करण ने इस बारे में किसी से भी नहीं पूछा क्योंकि शिविका ज्यादातर बाकी सबके बाद ही ऑफिस आती थी, और करण आज वैसे भी टाइम से पहले आ गया था तो वो अपना काम ही देखने लगा, और इसके साथ उसने शिविका का आज का शेड्यूल भी बनाकर रेडी कर लिया। लेकिन अब तो लगभग 12 बजने वाले थे और अब तक शिविका का कोई अता पता नहीं था, तो अब करण को पता नहीं क्यों उसे मिस करने लगा। करण बार बार ऑफिस के मेन गेट की तरफ ही देख रहा था और तभी उसे ऋषभ वहां से अंदर आता हुआ दिखा, लेकिन ऋषभ ने वहां ऑफिस में किसी से भी बात नहीं की और सीधा शिविका के केबिन की तरफ ही बढ़ गया। करण भी उसके पीछे नहीं गया क्योंकि वो ऋषभ का नेचर जानता था और उसे ये तो नहीं पता था कि ऋषभ आज ऑफिस क्यों आया है, लेकिन उसे लगा कि जरूर उसे शिविका से ही कुछ काम होगा और वो कहीं और से यहाँ पर आया होगा, इसलिए उसे नहीं पता था कि शिविका अब तक ऑफिस नहीं आई। कुछ देर के बाद जतिन ने ऋषभ को अपने कमरे में बुलाया और बाकी सबके बारे में पूछने लगा, और कुछ देर के बाद जतिन करण के पास आया और उसने करण से कहा, करण तुम अब तक यहाँ हो, तुम अभी तक गए नहीं? करण ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन कहाँ जाना है मुझे सर? जतिन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अच्छा मैंने तुम्हें अभी तक इस बारे में नहीं बताया क्या? एक्चुअली एक घंटे पहले ही मैम का फोन आया था मेरे पास, वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगी और तुम्हें उन्होंने घर पर ही बुलाया है। एक काम करना, तुम सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। जतिन की बात सुनकर करण ने भी उससे और कोई सवाल नहीं किया और ओके सर बोलकर वो सीधा शिविका के केबिन की तरफ बढ़ा। केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए उसने देखा कि ऋषभ शिविका की कुर्सी पर नहीं बल्कि दूसरी साइड पर पड़ी हुई नॉर्मल कुर्सी पर बैठा हुआ है और कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़ी ही गौर से कुछ देख रहा है। ऋषभ ने अंदर आते हुए करण की तरफ एक बार नजर उठाकर देखा और उन दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला। करण ने अपना काम का सामान लिया और तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दिव्या ऋषभ के केबिन में आई और उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठते हुए बोली, हे ऋषभ कैसे हो, आज इतने दिनों बाद हमारा मिलना हो पाया है ना? उसकी बात सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, वैसे तुमसे मिलने तो नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन तुम बताओ क्या काम है तुम्हें?
दिव्या ऋषभ को काफी टाइम से जानती है और उसे पसंद भी करती है, और उसे पसंद करने का एक रीजन ये भी है कि वो शिविका का भाई है और साथ ही इतने अमीर घर से भी, इसलिए वो जब भी ऋषभ से मिलती है तो ऋषभ पर ट्राई करती रहती है, इसलिए ही उसने करण पर ट्राई नहीं किया। लेकिन ऋषभ उससे हमेशा ही इस तरह रूडली बात करता है और इसी तरह उसे उल्टा जवाब देता है, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई भी नहीं है, इसलिए दिव्या को ऋषभ की इस बात का उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिलने नहीं आए हो मुझे भी पता है, लेकिन मैं मिलूंगी तो यहाँ पर ऑफिस में ही ना, ये भी तो पता है तुम्हें, और तुम हमेशा इतना कोल्ड बिहेव क्यों करते हो, थोड़ा सा स्माइल कर लोगे तो क्या चला जाएगा? ऋषभ ने फिर से उसी तरह कहा, अब क्या करूं, इतनी फनी तो तुम हो नहीं कि तुम्हारी बात पर हंसू मैं, और बेवजह दांत दिखाने का मुझे शौक नहीं है। दिव्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखने की कोशिश की तो ऋषभ ने उतनी चेयर उसकी चेयर से दूर कर ली। ऋषभ के ऐसे रिस्पॉन्स पर दिव्या का मुंह बन गया और वो एकदम ही अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल सामने मेज पर पटकते हुए बोली, ठीक है ये लो, इन ज्वेलरीज में कलर स्टोन फाइनल करने का मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तुम एक बार चेक कर लेना या फिर शिविका को भेज देना, जो भी करना हो बाद में मुझे बता देना, और पता नहीं ठीक से बात कर लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। उसकी इस बात पर भी ऋषभ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली गई। वृंदावन में शिविका बहुत ही बेचैनी से करण का इंतजार कर रही थी और वो अब तक नहीं आया था, तो शिविका बार बार घर की तरफ देख रही थी, और फिलहाल वो घर में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसके पापा केयर टेकर नर्स और नौकरों के साथ नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर थे और ऋषभ ऑफिस चला गया था। हर्षिता भी अपने काम से घर से बाहर गई हुई थी और ज्योति काव्या अभी काव्या के प्री स्कूल से वापस नहीं आई थी। शिविका के पास उसका लैपटॉप था जिसमें कई सारे मेल आए हुए थे, इसलिए टाइम देखते हुए वो अपने मेल ओपन करके उन्हें चेक कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान घड़ी और दरवाजे की तरफ ही था। इसी बीच उसने सोचा कि वो एक बार करण को खुद ही कॉल कर लेती है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा करने से कहीं करण उसकी बात का कुछ और मतलब ना निकाल ले, और अगर वो कॉल करेगी भी तो करण से क्या पूछेगी। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना, तो आखिरकार अपना मोबाइल फोन निकालकर उसने करण का नंबर डायल ही कर दिया। लेकिन 2-3 बेल रिंग होते ही नर्वसनेस में उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल फोन साइड में बेड पर ही फेंक दिया। उसके बाद वो कुछ भी सोच पाती उससे पहले तुरंत ही उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ और उसने थोड़ा सा घबराते हुए स्क्रीन की तरफ देखा तो करण का ही फोन कॉल था, क्योंकि शिविका की मिस्ड कॉल देखकर उसने तुरंत ही उसे कॉल बैक किया। क्रमशः